और पाताल को मानो निगल जाएगा। तो जिस समय ऐसा हुआ, देवता लोग भगे डर के मारे, और समस्त देवताओं को खदेड़ता हुआ वो चला, इनको स्वर्ग इत्यादि से च्युत कर दिया। अब वो मरे कैसे? उस समय में इंद्र फिर ब्रह्मा जी के पास में गए, उन्होंने कहा दधीचि ऋषि के पास में जाओ, उनका यह यज्ञ किया हुआ और भजन किया हुआ शरीर वज्र से भी अधिक मजबूत और दृढ़ है, वो मांग लो। देवताओं के देवता लोग उनके पास में गए और उनसे कहा कि हम तुम्हारे पुरखे हैं, तुम्हारे गुरुजन हैं, हम देवता हैं, हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। वो हंसने लगे, तुम लोग किस लिए आए हो मैं जानता हूं, इतना जघन्य स्वार्थी और नीच, जो अपनी रक्षा के लिए दूसरों के प्राणों का मूल्य नहीं समझ सकता। हंसने लगे, फिर दूसरी दूसरी बातें कह करके उनको खुश किया। उन्होंने कहा ठीक है, जीवित रहते हुए गायों को चटा करके दधि और बूरा लगा लिया शरीर में, और गाय चाटने लगी, उनको शरीर को चाट गई, जो रह गया हड्डी उसी से वज्र बना, और उससे अब युद्ध हो रहा। उस समय जो उन्होंने भगवान की स्तुति की, श्रीमद् भागवत में एक दिव्य रत्न है। बहुत से लोग हम समझते हैं चित्रकेतु महाराज जी ने कुछ अपराध किया था और इसीलिए ये असुर बने थे, किंतु ऐसी बात नहीं। शिक्षा देने के लिए परम मुक्त शंकरसन के शिष्य चित्रकेतु महाराज जी जगत की शिक्षा के लिए ऐसा किया। शंकर उनके मित्र थे और गुरु भाई थे। ये मुक्त महापुरुष चित्रकेतु महाराज जबकि कैलाश में एक बार आए तो शंकर जी कुछ हरि कथा कर रहे हैं, पार्वती जी बड़ी सुंदरी हैं, उनको अपनी गोदी में या बैठी हैं, उनके कंधे पर हाथ रख करके कथा बोल रहे हैं। शंकर जी तो प्राय नग्न ही रहते हैं, सर्प की डोर कॉपिन, सर्प के आभूषण, सर्प का सब कुछ। किस लिए सर्प? सर्प धारण करने का कारण है, ये शंकरसन जी उनके आराध्य देव हैं, इसलिए अपने सिर पर रखते हैं, उनकी पूजा ही उनकी आराधना, उनका नाम ही उनका ये आभूषण है, इसलिए उनके प्रतीक रूप में हाथों में कंगन के रूप में यहाँ कान पर रखते हैं कि मैं कभी गड़बड़ कर दूं तो कान में आप थोड़ा सा मंत्र दे देंगे राम, इसलिए गले में लपट कर रखते हैं और वो कान के पास में खड़े रहते हैं उनको स्मरण दिलाने के लिए। तो ये ऐसे जो शंकर जी हैं, क्या बतला रहा, तो वो जब कर रहे थे कथा, वो आए हंस करके और अपने मित्र से बोले, अरे पार्वती जी को यहाँ रख करके ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा कोई करता है? अरे ये लोग क्या कहेंगे, ये परम वैराग्य की बातें कहते हैं और अपने भोगी जैसे अपने स्त्री को जो परम सुंदरी है उसके कंधे पर हाथ रख करके और ऐसा कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं। तो ये हंसने लगे तब तो शंकर जी भी मुस्कुरा दिए, किंतु पार्वती जी को बड़ा क्षोभ हुआ, वो नहीं शांत कर सके। उन्होंने कहा जाओ तुम दैत्य हो जाओ, शंकर को कोई समझाने वाला उनका कोई गुरु नहीं है, तुम ही उनका गुरु है, ब्रह्मा जी इनके गुरु नहीं, विष्णु गुरु नहीं, सबके ये गुरु, और इनके तुम समझाने वाला उपदेश देने वाला तुम गुरु हुआ, इनका अपमान किया। शंकर जी को अपमान नहीं हुआ, किंतु अपमान किसको हुआ? उमा को हो गया, पार्वती को हो गया, मैंने सती जी थी ना, सती जी को ये अपमान हुआ। अपमान तो शिव जी का, किंतु शिव जी समझ रहे हैं जी हमारे ये सखा है, और इसी के लिए ये वैष्णव का अपमान नहीं करना चाहिए, ये उपदेश देने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, वो बिगड़ करके ऐसा कह दिया। उन्होंने कहा जी एओ मस्तु, ऐसा ही हो, अपने सिर पर उनका भी संपाद। शंकर जी ने कहा अरे तुमने क्या कर दिया, तुमने बहुत गंदा काम किया, उचित नहीं किया, जब यदि तुमको अभी संपात दे तो क्या होगा? इन्होंने तो देखो तब मुस्कुरा करके इस बर को सांप को बर के रूप में ग्रहण किया, तुम तो बिगड़ गई। और ये यदि तुम्हारे अभी संपात को लेकर के कहें जब मैं नहीं लेता, जिसके जिसने दिया है ये उसी के पास चला जाए तो क्या होता है? जरूर चला जाता है। कहाँ ये परम मुक्त पुरुष है। अरे ऐसे महापुरुषों के लिए किसी नीच योनी में जाना, असुर कुल में जाना, दैत्य कुल में जाना, जो कुछ भी सब बराबर है, ये लोग इससे सब अतीत है। इसके बाद उन्होंने ओमस्तु ग्रहण करके अभी उसी समय में साथ ही साथ में दैत्य बने। ऐसा नहीं बहुत दिनों तक तो दैत्य नहीं रहे, क्यों? केवल मात्र उनका अभिशाप जो दिखलाने का था, जैसे हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का दिया हुआ वर था रावण के लिए, जिसको चाहेगा उसके ऊपर में ये ब्रह्मास्त्र जरूर लगेगा। तो इसलिए उन्होंने केवल ग्रहण कर लिया, उनकी थोड़ी में थोड़ा सा लग गया था ना, उसको उसी से दूर किया। वो ये सबके अधीन नहीं। उसी प्रकार से चित्रकेतु महाराज के ऊपर में वो उनका साप नहीं लगता, किंतु जानबूझ करके ले लिया जिनका सम्मान रहे। अब देखो अधिक देर तक नहीं रहे और उसी समय में एकदम इंद्र से युद्ध हुआ होता है, और उसी समय में वो भगवान का सुंदर रूप से स्तव स्तुति का कैसा, जो उसके पहले तक अभी तक ऐसा कोई स्तव स्तुति या भगवान का भक्त इतना उच्च कोटि का नहीं हुआ। इसके पहले आपने ध्रुव जी का चरित्र सुना है, अभी प्रहलाद महाराज का चरित्र नहीं आया, आने वाला है। और सब चरित्र हैं, किंतु चित्रकेतु महाराज की भक्तिपूर्ण जो स्तव स्तुतियां हैं इनके समान वो नहीं है। क्या स्तव स्तुति कर रहे हैं? अरे बराक इंद्र तुमको मारता क्यों नहीं है? मैं जल्दी से ये सती का जो अभिशाप है इसको मैं दूर करूं और पुनः भगवान का चित्रकेतु के रूप में मैं भजन करूं। इस तामस शरीर से ऐसा भजन नहीं हो, और तभी इस तामस शरीर में ही रहते हुए देखो जो कैसे स्तुति कर रहे हैं भगवान की, इंद्र तू क्यों नहीं मार रहा? ऐसा उन्होंने वज्र चलाया किंतु ऐसा हुआ कि अपने गदा के नोक से उसे गिरा दिया और ऐरावत के सिर पर मारा, ऐरावत भी गिर गया। जब वज्र गिर गया तो हाथ से नहीं उठाया, अरे जल्दी से उठा करके मुझे मार, जल्दी से मार, मारता क्यों नहीं है? जब देखा जैसे इंद्र नहीं उठा रहा है तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, अजात पक्षा इव मातरम खदा तन्ने यथा बच्चतरा क्षुधार्ता प्रिय प्रिय विशुतं विषन्ना मनोरबिंदाक्ष दिदिक्षये त्वा नना। इसका पहले का क्या है? अहं हरे पाद कमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गणित पाक कर्म करो तुकाय। प्रार्थना करे प्रभो ये नहीं मारेगा, अब अभी से प्रार्थना करता हूं हमारा जन्म हो कहीं भी कोई भी बात नहीं, किसी भी जन्म में जोनी में मेरा जन्म हो, मैं इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं जो बद्ध जीवों के लिए तीन कारण होते हैं कार्य करने के, जिसके द्वारा करता है, तन मन और वचन। तन मन वचन से ही कोई कार्य होता है। ये तन मन वचन तीनों ही आपकी सेवा में लग जाए, मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। अहंघरे तो पादई कमूल दासानुदासो भवितास्म भूय। हे प्रभु आपके चरण कमलों के जो दास हैं उनके दासों के जो अनुदास हैं मैं उनमें से कोई एक होकर के जन्म ग्रहण करूं। कब तक? अनंत काल के लिए। जहां पर उनके दासों का दास होकर के हमारे वाक्य से जो कुछ निकलता है उससे आपकी लीला कथाओं का मैं वर्णन कर सकूं और मन ही से उनका स्मरण करूं और शरीर के द्वारा उन्हीं सेवाओं को कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहता, न नाकपृष्टम न च पारमेश्चम, मैं स्वर्गलोक भी नहीं चाहता, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहता, ब्रह्म पद भी नहीं चाहता, रसातल का राज्य नहीं चाहिए मुझे, जहां पर बलि महाराज राज्य करते हैं वो भी हमको नहीं चाहिए, यहां तक कि हमको जगत में आने जाने से जो पार है उस मुक्ति को भी हम नहीं चाहते हैं। जन्म हो कोई बात नहीं, मरण हो कोई भी बात नहीं, किंतु जहां जहां जाऊं ऐसे भक्तों का संग हो और बिना आपकी सेवा का ये मुक्ति इत्यादि जो कुछ कहा मैं कुछ नहीं चाहता, बस आपकी सेवा चाहता हूं। तीन प्रकार उसी के लिए उदाहरण दिया। प्रभु कहते हैं कि भाई तुम मुक्ति मांग ले, तुम स्वर्ग ले लो, राज्य ले लो और भक्ति भी करो जैसे ध्रुव इत्यादि ने किया। नहीं प्रभु, हमको वो सब जरूरत नहीं, मुझको ये सब की आवश्यकता नहीं। अजात पक्षा युव मातरम खगा, जिस प्रकार से आप उसी को दे रहे हैं, जो पहले जो मांगा था तन मन और वचन की सेवा जो मांगा था, जिस प्रकार से वचन के द्वारा हरिनाम कीर्तन इत्यादि करते हैं, भगवान की स्तव स्तुति करते हैं, लीला कथाओं का वर्णन करते हैं, उसके लिए कहते हैं अजात पक्षा युव मातरम खगा। जिस प्रकार से एक बच्चा चिड़िया का पैदा हुआ और वो मैया उसको घोंसले में रख करके चली गई कुछ दाना बिनने के लिए, उसके खाने के लिए गई, ये कहां से ले आऊं, इधर में बच्चा अकेला है, कौआ यदि देख ले उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर के खा जाएगा, उल्लू खा जाते हैं, इसलिए बच्चा डर रहा है। जहां पान कोई कोई पत्ता सूखा खड़कता देखा, कहीं उल्लू तो नहीं आ गया, डर के मारे एकदम कांप जाता है, बोल सकता नहीं, उड़ सकता नहीं, मन ही मन चिंतन करता है अपने मैया जी, मैया कब आ जाए, मैया आ जाए इसका जो स्मरण करता है, किस लिए, इसलिए कि मैया आने से हमारा डर दूर हो जाएगा। हम भगवान को पुकारते हैं हम ब्रह्मास्मि इत्यादि के रूप में, या योगी लोग जैसे पुकारते हैं, साधारण लोग पुकारते हैं, किस लिए, आवागमन का ये जो दुख है इसको दूर करने के लिए, अधिकांश लोग हमारे दुख दूर हो जाए इसलिए भगवान को पुकारते हैं, भगवान के लिए भगवान को पुकारते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं। इसलिए कहते प्रभो, जिस प्रकार से वो जिसको पंख नहीं, ऐसा छोटा सा बच्चा दुख को दूर करने के लिए, और एक माता से लालसा है जो आएगी, उनको तो स्तन तो है नहीं, दूध तो पिलाएगी नहीं, बाहर से कीड़े मकोड़े ले आएगी और हमारे मुख में डाल देगी तो मुझको खाना भी मिल जाएगा, और जो ही उसकी मैया आ जाती है डर दूर हो जाता है और उसे खिला देती है, फिर मैया की पूछ नहीं करता, मैया की चिंता नहीं करता, जब तक मैया बाहर में है तभी तक। उसी तरह से जो लोग हैं भगवान को चाहते हैं, ध्रुव जैसे या और भी सब लोग हैं, अपने दुख के लिए पुकारते हैं जो दुख न हो और सुख मिले, ये भक्ति नहीं है, इसमें अपना स्वार्थ है। इसलिए कहते हैं अजात पक्षा इव मातरम खगा, मनी मन जिस प्रकार से वो चिंतन करता है व्याकुल होकर के, ऐसे ही मेरा चित्त वहां पर करे, भगवान का स्मरण करे, किंतु हम वो तो अपने सुख के लिए और दुख को दूर करने के लिए करता है, हम ऐसा नहीं करना चाहते। इसलिए दूसरा उदाहरण देते हैं, अजात पक्षा युव मातरम खगा स्तन्ये जथा बच्चा तरह क्षुधार्ता, जिस प्रकार से एक छोटा सा बछड़ा अपने खूंटे पर बंधा हुआ है और मैया चर करके शाम को आई, बछड़ा खूब भूखा है, अपने मैया को देख करके बहुत जोर से डकारने लग गया, डां डां करके, मैया भी हम्बा हम्बा कर रही, किंतु उसको चरवाहे ने लेकर के गोप ने खूंटे पर बांध दिया और इधर खूंटे पर बंधा है, जैसे हम लोग निद्रा देवी के साथ में अपने खूंटे में बांध देते हैं और हजार चेष्टा करते हैं ये खोल लें और कथा सुने तो नहीं सुनने देगा, क्योंकि वो निद्रा देवी के खूंटे में बंधा हुआ है इसलिए ये खूंटा कैसे खुलेगा उसी के लिए मैं बतला रहा हूं, निद्रा देवी कैसे छोड़ेगी। तो बछड़ा पुकारता है किस लिए, मैया के लिए, डा डा पुकारता, अम्बा अम्बा करता है, हम्बा हम्बा नहीं, अम्बा माने क्या होता है माँ, अम्बा अम्बा करता है, हम लोग उसको कहते हैं हम्बा हम्बा कर रहा है, अम्बा अम्बा करता है। थोड़ी देर के बाद में वो मालिक आया, उसने बेटे को सावधान कर दिया, ये देखो मैं जब कहूँगा तो बछड़े को खुलना। वो रस्सी ले आया और घड़ा भी ले आया जिसमें वो दुहेगा, बर्तन ले आया, बछड़े को पिलाना उसका नहीं है, वो किस लिए, वो अपने घड़े को दूध से भरना चाहता है और गैया ऐसे दूध देगी नहीं। तो उसने कहा बेटे को, अच्छा बेटा खोल दो यार। तो जब खेलने जाता है तो इतने जोर से वो दो पैर पर खड़ा हो जाता है जो उसका जो लगाम जैसा जो रस्सी होती है बड़ी कड़ी हो जाती, खोल नहीं पाता, बहुत मुश्किल से नहीं खोल पाता। अरे पिताजी ने कहा, अरे तुम खोलता क्यों नहीं है, तो पिताजी खोलने नहीं देता। तो पिताजी आए, आ करके बछड़े को रस्सी समेत थोड़ा सा खूंटे की तरफ में किया, जब ढीला हो गया तो उसने खोल दिया। उसके पीठ पर वो रस्सी देंगे वो भी समय नहीं, एकदम डां डां करता हुआ उसके स्तन में बड़े जोर से मुख मारा और दूध पीने लगा। इसी तरह से यदि भगवान को पुकारना है तो बछड़े के समान पुकारो, बड़े दुख से अम्बा अम्बा, जो ऐसा पुकारेगा व्याकुल होकर के और कहीं चित्त नहीं है तो मिल सकते हैं भगवान और दूध भी पिला देंगे। किंतु उसने सोचा अपने स्वार्थ के लिए यह बछड़ा कर रहा है, मैया को पुकारता तो है किंतु दूध के लिए मैं ऐसा नहीं पुकारना चाहता। इसलिए अब क्या होना चाहिए, पहला जो बतलाया जो दोष, मन से स्मरण करता है भगवान का किंतु अपने भोजन के लिए, दुख को दूर करने के लिए, अब ये अपने भूख को दूर करने के लिए और पेट भरने के लिए मैया को पुकार रहा। हम भी भगवान को ऐसा ही पुकारेंगे तो भगवान दूध वूध भिजवा देंगे, गाय भी दिला दे, गैया दिला दे राम तो गाय भी दिला देंगे, किंतु ब्रज का प्रेम नहीं देंगे, वो आएंगे नहीं सामने। इसलिए इसकी त्रुटियों को समझ करके कहा राजे प्रभो इसमें भी एक दोष है, अपने लिए स्वार्थ के लिए पुकार रहा है। इसलिए तीसरा उदाहरण दिया, प्रिय प्रिय वो विषतं विषन्ना मनोरबिंदाक्षित दीक्षते त्वाम। प्रभो एक प्रिया जैसे अपने प्रियतम से भी छूट करके दिन रात प्रियतम की चिंता करती है, कैसे पहला जैसा वो पक्षी सावक जैसा, अब बछड़ा जैसे उनके लिए पुकारता है वैसे ये प्रियतम के लिए पुकारती है, कीर्तन करती है उनका सूच। और तीसरा बिना किसी स्वार्थ के उसके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करती है, पानी सुंदर पानी की व्यवस्था है, क्योंकि वो विदेश है, विदेश से आ रहा है, इसलिए विदेश से आने के सुनते ही जैसे बछड़ा तो दूध के लिए लपकता है और बच्चा कुछ खाने के लिए और ये कुछ लेने के लिए नहीं, पहले घर में आएंगे अच्छा सा आसन दे करके सुशीतल पानी दे करके गरम गरम रसोई बना करके उनके लिए दे करके और पंखा झलेगी उनके तृप्ति के लिए। और यदि सचमुच में वो प्रियतमा है तो अपने लिए कुछ चिंता ही नहीं करती, जैसे गोपियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर गोपी भाव का कुछ झलक आता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में इसको आदर्श भक्ति युक्त बताया, यहीं से आरंभ हुआ दशम स्कंद आने वाला है ये समझो। यदि भगवान को किसी को यदि पाना है, चित्रकेतु महाराज ने असुर होकर के दैत्य दानव होकर के जो भगवान की प्रार्थना की, ऐसे ही प्रार्थना, ऐसे ही स्मरण और ऐसे ही सेवा की वृत्ति होनी चाहिए, तब भगवान मिलेंगे अन्यथा नहीं मिलते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। चित्रकेतु महाराज जी पहले, हाँ इसके बाद में एक और श्लोक, मम उत्तम उत्तम श्लोक जनेशु सक्षम संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी तन्मायातो आत्मज दारगेहेषु न न नाथ भूयात्। उन्होंने एक अंतिम में ये वर मांगा, जे प्रभु ये नहीं होगा, ये तीन जो हमने कहा ये संभव पर नहीं। ये संभव कब है? यदि आपके दासों के दासों के अनुदास कहीं मिल जाए और उनकी मैं सेवा करूं और उनमें हमारा चित्त ममत्व की भांति लग जाए और उनकी सेवा में लग जाए, तब ये तीनों चीजें आसानी से हो सकती है, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए कहा मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। उत्तम श्लोक जनेषु, उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण है, उनके जन कन है, ब्रजवासी जन है, उनके भक्त लोग उनके निज जन है, उनके साथ में सख्य भाव हो। सख्य भाव क्यों कहा? ये कहते जब मैं उनका सेवक हो जाऊं, कहे नहीं उसमें अधिक चीज नहीं मिलेगी, विषम सेवा उसमें नहीं मिलेगी। विषम सेवा कहां होगी? सख्य भाव में, बराबर बराबर के भाव में। इसलिए मैं यदि गुरु के समान गुरु ना हो तो गुरु का महत्व नहीं समझ सकता और कभी उनकी सेवा नहीं कर सकता। क्या चाहते हैं उसको समझना चाहिए। जो लोग ये गुरु का भाव क्या है, हृदयगत भाव क्या है, कैसे इनकी सेवा होगी वो समझेंगे। बड़े बड़े लड्डू दे करके गुरु जी से वो खिला करके प्रसन्न किया जाए, कोई समझेंगे गुरु जी को प्रसन्न कर लेंगे, उनके पॉकेट में जो कुछ है वो मेरी पॉकेट हो जाएगी, इसलिए उनकी सेवा करो। कुछ लोग सोचते हैं जे अच्छे अच्छे खाने पीने से वो प्रसन्न होंगे, किंतु कैसे वो प्रसन्न होंगे? गुरु जी यदि उनके आराध्य देव को यदि संपूर्ण रूप से कोई सेवा करे उनके ही समान और उनसे ऐसा ही सेवा करने की शिक्षा ले, तो वो अपने आप प्रसन्न हो जाए, इसके अतिरिक्त प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान के जो सेवक हैं उनकी यदि सेवा किया जाए ना तो वो बहुत प्रसन्न हो। अभी जगत में ऐसे लोग वैष्णव का एकदम अब नहीं है, ऐसा नहीं, अभी भी हैं वैष्णव, अभाव नहीं है, नहीं तो पृथ्वी रह नहीं सकती। जरूर ऐसे वैष्णव लोग हैं, हम लोग जानते भी हैं जैसे कुछ वैष्णव लोग हैं, गुरु लोग भी ऐसे हैं जो वैष्णव का अनादर यदि उनका शिष्य करता है तो बड़े वो दुखित हो जाते हैं और उसके बदले आप ही क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हम मुख दर्शन नहीं करेंगे शिष्यों से, ऐसे लोग अभी भी हैं। इसलिए भाई इस विषय में सावधान रहना चाहिए। गुरु जी यही चाहते हैं कि प्रत्येक वैष्णव जो हैं उनका सम्मान किया जाए, यथार्थ वैष्णव गुरु का सम्मान किया जाए। मैं ही एक जगत में गुरु हूं ऐसा नहीं, प्रत्येक वैष्णव ही गुरु हैं, इसलिए यथायोग्य उनका सम्मान किया जाए। उसके सम्मान करने से भगवान प्रसन्न होंगे, गुरु जी प्रसन्न होंगे, वैष्णव प्रसन्न होंगे, इसलिए ऐसा होना चाहिए। इसलिए उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी, अपने कर्मों के फल से जहां जहां भी संसार में कीट पतंग मनुष्य गंधर्व देवता होकर के मनुष्य होकर के जन्म लूं, उत्तम श्लोक के जो अपने प्रियतम भक्त वैष्णव है जहां पर हैं उनका संग मिले। संग मिलने से क्या होगा? संसार में जहां जहां आसक्ति है ना उसको वो काट देंगे और फिर क्या करेंगे, हमारे उस चित्त को निर्मल बना करके कृष्ण के चरणों में, गुरु के चरणों में वो लगा देंगे, इसके अतिरिक्त नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि हमारी आसक्ति जो आत्मा आत्मज दार गेहेशु न चित्त आसक्त भूया, हमारी आसक्ति वहां नहीं रहे, कहां? धन में, पुत्र में, परिजन में, स्वर्ग में, मुक्ति में, स्त्री में, पति में हमारा चित्त आसक्त न हो, धन इत्यादि में आसक्त न हो। आसक्त किस चीज में हो? अधिकांश तरह से लोग संसार को तो छोड़ देते हैं, बहुत से आदमी अपनी स्त्री को भी छोड़ देते हैं, पुत्र को भी छोड़ दिया, भले ही मन से स्मरण करते हैं वो कोई बात नहीं, किंतु छोड़ तो दे दिया, छोड़ करके कोई आसक्ति भी छोड़ दिया नहीं स्मरण कर, यहां आकर के अपने शरीर पर ऐसी आसक्ति हुई जो भगवान की गुरु वैष्णव की सेवा नहीं करते, अब बतलाओ तो छोड़ने का मूल्य क्या हुआ? हुआ कुछ? डरते हैं जे गुरु वैष्णव की सेवा के लिए हमको बर्तन यदि मांजना पड़ा, यदि हमको ठाकुर की सेवा में यदि भिड़ा दिया जोर से तो सवेरे सवेरे हम सो नहीं सकेंगे। कीर्तन के समय में उस समय में नाक दबाते हैं, किस लिए? लोग कहेंगे जैसे अरे कीर्तन में जाना है, तो वो कीर्तन में नहीं जा सकेंगे। इसलिए उस समय में या तो पैखाना टट्टी लग जाए या अन्न ही करने के लिए बैठेंगे कीर्तन में, या और सेवा का काम हो। यदि बर्तन मांजने का काम कर, हमको बहुत बुखार हो गया है, उठ नहीं सकते, एक दिन तक खाना नहीं खाएंगे ये मंजूर है, किंतु सेवा नहीं करेंगे। जिस सेवा को भगवान ने करने के लिए मनुष्य शरीर दिया, ये इसे गुरु वैष्णव की सेवा करके हम प्रसन्न कर सकते। तो वो दुर्भागा लोग हैं, सबसे दुर्भागा वो लोग हैं, इतना सुंदर शरीर मिलने पर भी ने? जो भगवान की सेवा जो आसानी से हो सकती थी, आरती के समय में आना, पाठ के समय में आना, प्रवचन के समय में आना, ये सब जो नहीं करते हैं, छोटी छोटी सेवाओं को समझते हैं कि ये सेवा नहीं है, वो उनसे बढ़ करके कोई दुर्भागा नहीं। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, अपने आरती दर्शन में आओ, कीर्तन करो सभी मिलकर, इसके बाद में अन्य इत्यादि करो, फिर समय से पाठ प्रवचन में, विशेषकर अभी ये विशेष रूप से हो रहा है, उसमें सभी लोग कीर्तन में आओ। सेवा कितनी है, सभी मिलकर के 5 मिनट 1 मिनट करेंगे तो सभी सब सेवा हो जाएगी, दूर कहाँ भागेगी। इसलिए इन सबों में चित्त रखते हुए ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमते स्वकर्म भी तन्माया तो आत्मज दारगेहेषु नाशक्त चित्तस्य भूयात्। ये हमारी ममता सारी सेवा की वृत्ति उन वैष्णव और संतों के साथ में हो जो कि कृष्ण की सेवा करते हैं तन मन और वचन से, ऐसे लोगों की सेवा न हो, और उनके मुख से हरि कथा सुनेंगे, उनकी ऐसी पैनी तलवार की धार से कथा होती है जो संसार से आसक्ति काट देगी और उधर में जोड़ देगी। वो बड़े वो ऑपरेशन करने वाले वो डॉक्टर ही हैं, जैसे यहाँ का हाड़ जोड़ देते हैं यहाँ ना, यहाँ की नाली काट करके और यहाँ पर लगा देते हैं, 22 पास सर्जरी कर देते हैं, तो वैसे ही ये भी सर्जरी करने वाले ये लोग डॉक्टर हैं। वो क्या करते हैं, इधर की आसक्ति को काट करके आसक्ति को लिया और उधर में कहाँ लगा दिया, वैष्णव के चरणों में, गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में लगा, दूसरा नहीं कर सकता, तुम नहीं सर्जरी कर सकते, तुम तो मरोगे, इसलिए ऐसा मत करो। ऐसी सुंदर सब प्रार्थना की है, बहुत शिक्षाएं, भजन करना है तो ऐसे करो भजन, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए तन मन वचन से सब समय भगवान की सेवा, भगवान का गुणानुवाद, उनका उनकी जो सेवा है हाथों से किस काम में आएगा। एक आदमी कुछ सेवा नहीं किया और बड़े आराम से रखा, मरने के बाद में क्या होगा, हाथ तो जलेगा कि नहीं, जलेगा ही, गाड़ दिया जाएगा, कीड़ा हो जाएगा, तो क्यों नहीं हम सेवा करें, दिन रात परिश्रम करके कठोर साधन के साथ में भगवान का भजन करें, जैसे इन्होंने किया था, प्रहलाद महाराज ने किया और आगे सब देखेंगे। इस तरह से भजन करो भाई, और उसी तरह से भागवत को सुनो, किस तरह से एक एक अक्षर एक एक उपदेश कानों में जा रहे हैं, उसको कर्णभूषण बनाओ हरि कथाओं को, हरि कथा को भगवान समझो, रस समझो। अभी कल भी बतलाता ना हरि लीला कथा प्राता, और भगवान इन लीला कथाओं के माध्यम से लीला कथाओं का वेश धारण करके स्वयं भगवान और भीतर में पहुंच जाते हैं, प्रविष्टे कर्ण रंध्रेन, वो घुस जाएंगे। इसलिए इसकी अवहेला मत करो। कीर्तन के समय में किसी ने बुलाया, बड़ी मुश्किल से आए और जहां कथा आरंभ हुई भाग जाओ, ऐसा मत करो। हम लोग चाहते हैं कि यहां पर बैठ करके सुने, अरे जहां जिस सुखदेव के मुख से वो सुन रहे हैं, उनके गुरु व्यासदेव सुन रहे हैं, नारद सुन रहे हैं, सांडिल्य सुन रहे हैं, पराशर सुन रहे हैं, किंतु सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे थे ना, तो ऐसे ही कथावाचक और श्रोता भी ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग इसी से अभ्यास करें, जो भगवान कृपा करके हम लोगों को ये सुयोग दे दें, जिससे कि हम लोग हरि कथा के माध्यम से अत्यंत सहज रूप में सेवा की वृत्ति उदित हो और सेवा की वृत्ति से भगवान को हम लोग पा जाए। आज यहीं तक रहे। बंझा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। पुंडरीक विद्यानिधि will express all these things to Western devotees after our classes. You should all together, you can go to upside and he will translate you in English. Adha.
जमाना हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय हरे राम राम राम
हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल तो बहुत परिश्रम हो रहा है नहीं हो रहा है तब हरि बोल केवल हरि बोल हरि बोल बजाओ श्रेष्ठम मनुमपि सची पुत्रमत्र स्वरूपम् रूपम तस्याग्रज उरिपुरीं मातरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य पथिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जयामि तया विना इति विज्ञाय राधे तं न मां चरणान्तिके
इंद्रप्रस्थ में बहुत जोरों की सभा जमी हुई थी। बड़े बड़े देशों से राजन्य वर्ग गुरु वर्ग ऋषि महर्षि सब लोग आ रहे थे और सभा मंडप के पासी में नीचे कृष्ण बैठे हुए सब लोगों का चरण धोत करा रहे हैं, अपने आप धो रहे हैं। उन्होंने ये मांग लिया था। लोग बड़े लज्जित हो रहे जी, कृष्ण हमारे पैर धोएंगे, किंतु कृष्ण ने ऐसा ही किया। जो विश्व ब्रह्मांड के सबके अधिनायक हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले ईश्वरों के भी जो परमेश्वर हैं, आज पानी लेकर के सब लोगों का पैर धोने के लिए प्रस्तुत है, धो रहे हैं। बड़ी विराट सभा जुटी। अब उसमें यह प्रश्न उठा, आगे पूजा किसकी हो? सब लोगों की नजर कृष्ण पर गई। भीष्म पितामह जी विदुर थे, पांचों पांडव लोग थे, उसमें छोटा सा सहदेव था। उसने ये प्रपोजल दिया, कृष्ण से बढ़कर के और कोई देवता नहीं है, और यहाँ पर सबसे तुच्छ सेवा वो कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ, मैं यह प्रस्ताव देता हूँ कि कृष्ण ही, कृष्ण की ही पूजा की जाए सबसे पहले। शिष्यपाल तीर मिला गया, दुर्योधन दुशासन कर्ण इत्यादि जितने दुर्जन राजा लोग थे, वाह वाह करने लगे, शिशुपाल की, और शिशुपाल और बहकने लगा और बात करने लगा। कृष्ण के लिए बहुत सी गालियां दी, जिसका बाप ठीक नहीं है, जिसे कोई जाति ठीक नहीं है, जिसका चरित्र बचपन से ही ठीक नहीं है, बचपन से चोरी करता है। अरे चोरी तो करे, चोरी करे किशोरी स्त्रियों की, बालिकाओं की वो कपड़ा भी चोरी करता है। ऐसे दुष्ट आदमी, ऐसे आदमी व्यभिचारी, इनकी पूजा आगे नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही करता गया, जब 100 किया ऐसे गालियां दी, कृष्ण का चक्र सुदर्शन उनके हाथों में आ गया। सब समय रखते नहीं थे, जब जरूरत पड़ती तो तभी आ जाते थे। आया, उन्होंने ऐसे किया और एक क्षण विलंब नहीं हुआ, उसका सिर काट करके अलग रख दिया और उसमें से ज्योति निकली। निकल करके कृष्ण के चरणों में समा गए। देवता ऋषि लोग सब धन्य धन्य करने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी। कृष्ण ऐसे दयालु, इसकी जीव में कुष्ठ रोग नहीं हो गया, नरक नहीं गया, और इसको साजीज मुक्ति दे दी। युधिष्ठिर महाराज जी बड़े आश्चर्यचकित होकर के पास में बैठे थे, नारद ऋषि उनसे ये प्रश्न किया। अच्छा, ये प्रभु की बात हमको समझ में नहीं आती। समझ से बाहर की बात है, जिसको इस जगत से किसी का डर नहीं है, और जो पूर्ण काम आत्म काम है, उनकी कोई कामना ही नहीं है, जिसको जगत के लोग पूरा करें, तो वो देवताओं का पक्ष लेकर के, साधुओं का पक्ष लेकर के असुरों को विनाश करते हैं। ऐसा क्यों, उनको पक्ष लेने की क्या जरूरत है? ऐसा तो नहीं चाहिए। शास्त्रों में भगवान के लिए लिखा है, वो समदर्शी हैं, किंतु मेरी समझ में नहीं आता ये प्रभु कैसे समदर्शी हैं। शास्त्रों को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि समदर्शी नहीं है, दैत्यों को दूसरी नजर से देखते हैं और देवताओं को दूसरी नजर से, संतों को एक नजर से, असंतों को एक नजर से देखते हैं। ऐसा क्यों? और इसको नरक होना चाहिए, कोटि कोटि वर्ष तक नरक में जाता है, और इसको सदगति दे दी, जो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञ जो हैं लाखों वर्ष तपस्या आराधना करके नहीं पाते हैं, और उसको वो गति दे दी, अद्भुत। तो मेरी समझ में नहीं आता है। तब उन्होंने बहुत मार्के की चीज बतलाई। इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इस उपाख्यान को 108 बार पढ़े, और जहां समय मिलता था इसी का प्रवचन कर। हम लोग के गुरु जी भी देखा है, जिस पुस्तक को वो पाठ करते थे उसमें सब जगह लाल लाल दाग लगाए हैं, और उसमें वो मथुरा में वो पुस्तक है भागवत, और उसका गूढ़ार्थ कुछ कुछ शब्दों में इम्पोर्टेंट लिख करके और उसमें लिखा है, जो कहां कहां से उन्होंने अर्थ और कैसे कैसे लिए हैं। अधिकांश इसका और एकादश संत का वो पाठ करते थे। मैं भी इसको समझने की बहुत चेष्टा करता था, ऐसा क्यों, जो प्रश्न भी किया, हमारे समझ में भी बहुत दिनों तक नहीं है। बहुत सारे लोगों से पूछा, किंतु हमको भी इसका ठीक से सामंजस्य नहीं मिला। धीरे 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 कुछ गुरु वैष्णव की कृपा से, गुरु महाराज जी के समय में तो ये प्रश्न करने का, ये नहीं तो हम लोग तो बच्चे थे उस समय, इसलिए उस समय तो नहीं, किंतु पीछे से ये प्रश्न हुआ, उसका समाधान करने वाला मिला नहीं। चेष्टा भी की तो नहीं हुआ, किंतु धीरे 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 विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की और सब टीकाओं को क्रम संदर्भ इत्यादि देखने पर कुछ कुछ हुआ। इसी को नारद जी युधिष्ठिर महाराज के इस उत्तर में जो कुछ कहते हैं, खूब गंभीरता से विचार करके इसको श्रवण करने की चेष्टा करना। सप्ताह का फल या ये नहीं है, सप्ताह करते चले जा रहे हैं, कोई गंभीर चिंतन नहीं आया, ऐसा नहीं। इसलिए हम लोगों ने सप्ताह इसका नाम नहीं रखा, भागवत कथामृत, इसलिए उसको 7 दिन तक नहीं रख करके इसको हम लोगों ने 11 दिन रखा। हमारे तो चाचे 12 दिन, किंतु 12 दिन का समय नहीं मिला क्योंकि उधर में राधाष्टमी आ रही है, इसलिए 1 दिन पहले इसको हमने समाप्त करने की घोषणा की। भागवत में हमने देखा है अंत में जो 7 दिन का जो भागवत होता है वो राजसिक है, वो राजसिक, और एक 12 दिनों में जो भागवत होता है वो कुछ सात्विक है, और जीवन भर जो पर चलता है वो निर्गुण है, जिसमें अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए जो कुछ सुनते हैं पढ़ते हैं यह है निर्गुण, और किसी फल प्राप्ति के उद्देश्य से 7 दिन में समाप्त करते हैं, न तो श्रोता ही समझ पाता है न वक्ता बोल सकता है, जीव का निर्वाह के लिए होता है, उसको राजसिक कहते हैं। उसका भी फल कुछ है, जरूर है तो जरूर, किंतु जिस उद्देश्य से ये भागवत की का प्रकाश हुआ है ये नहीं होगा, इसको अच्छी तरह से समझें। इसलिए एक श्लोक भी हो उसको हम जीवन में आचरण करेंगे उसमें प्रतिष्ठित होंगे, इसके लिए प्रचेष्टा करनी चाहिए। यह है भागवत श्रवण, इसलिए जीवन भर भागवत समझेंगे उसको पढ़ेंगे। इसलिए इसको भक्ति का अनुष्ठान समझ करके हम इसको इसलिए समझेंगे, इसलिए सुनेंगे कि हम इसके एक उपदेश को भी जीवन में हमने प्रतिष्ठित कर दिया तो हमारी भक्ति परिपूर्ण हो जाएगी। इसलिए ये सब सिद्धांत की बातें उन्होंने कहा है। उन्होंने पहले कहा कि भगवान को किसी से कोई डर नहीं, इसलिए किसी से शत्रुता होने की उनको कोई गुंजाइश नहीं, और उनसे कोई चीज की प्राप्ति करने की भी लालसा नहीं है क्योंकि वो पूर्ण काम है, इसलिए वो किसी से घुस लेंगे और जागती चे उनके पास नहीं है और दूसरों से लेंगे, यह बात भी गलत है, ऐसा भी नहीं। भगवान सब समय समदर्शी हैं, यह बात ठीक है, किंतु उसको समझना बड़ा कठिन है। ये कैसे, जैसे हम लोग इस अवस्था में गुरुदेव समदर्शी हैं, वैष्णव लोग समदर्शी हैं, जिसे हम लोग अभी नहीं समझ पाते, कहते हैं कि गुरु जी उसका पक्ष देते हैं, उसको बहुत अधिक प्यार करते हैं, हमको अधिक प्यार नहीं करते, इसलिए बहुत से लोग गुरुदेव को छोड़ करके चले जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। समझना इतना सहज नहीं है, कहाँ अप्राकृत भाव और कहाँ प्राकृत भाव। हम अपने प्राकृत भाव से विचार करते हैं, गुरु वैष्णव को भगवान को मापते हैं, इसलिए कृष्ण ने ये कहा कि मैं समदर्शी हूँ, वैष्णव लोग समदर्शी होते हैं। गवि हस्तने च विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तने सुनी चाहिए वह सपाके स समदर्शी, ऐसे वैष्णव लोग समदर्शी हैं, तो भगवान तो और जरूर समदर्शी होंगे। हनुमान जी समदर्शी हैं कि नहीं, होना तो चाहिए, किंतु कहाँ समदर्शी है। रावण और राम के प्रति समदर्शी रहे, हाँ रहे, ये समझ में हम लोगों को नहीं आता, समझाने से भी नहीं समझते। भजन करते करते गुरु से बात जब हम करेंगे तब इन चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए नारद जी ने समझाया, युधिष्ठिर महाराज ने इस विषय को समझाया, हम तो युधिष्ठिर नहीं हैं और वक्ता जो हैं वो भी नारद तो हैं नहीं, इसलिए यदि नारद हों और ऐसे श्रोता हों लाखों लाखों में से एक युधिष्ठिर महाराज के समान तो समझेंगे। प्रभुपाद जी मुक्त पुरुष हैं, इस चीज को समझते हैं, गुरु जी भी वैसे मुक्त पुरुष हैं, इसलिए इनकी महत्ता जानते हैं, आप लोग भी उनके चरणों में आए हुए हैं, इसलिए खूब अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक इन चीजों को समझ करके इसको ग्रहण करने की चेष्टा करें। अभी बतलाया ना, एक प्रहलाद महाराज जी का संग किया असुरों ने और लाखों शिष्य प्रहलाद बन गए, जितने बच्चे थे वो सभी प्रहलाद बन गए, इसलिए हिरण्यकश्यपु नहीं समझ सका और विरोध करने लगा। तो यहां पर वही कह रहे हैं, ये श्लोक भी यहाँ पर देखते हैं है, तथा न जस कैवल्यादि अभिमान्यो अखिलात्मन, यहाँ भी कैवल्य शब्द है जिसका हम लोग बहुत दिन 8-10 दिन से कैवल्य कैवल्य कह रहे थे प्रेम, कैवल्यादि अभिमानु अखिलात्मन। कृष्ण सबको कैवल्य देने वाले हैं, उसमें उनकी समदर्शिता है। कैवल्य माने केवल प्रेम, जो कल बतलाया था, किसको अधिकारी है, अनाधिकारी है उनको कैवल्य माने मोक्ष वाला, जिसको ऐसे दिया है शिशुपाल जैसे लोगों को। शिशुपाल को कैवल्य मुक्ति नहीं दी, उनको क्या दिया, सारूप्य देकर के उसका जो पहला एकाद स्वरूप था जय विजय, उसके रूप में प्रतिष्ठित करके नारायण के पास ले गए। हमने देखा जी कृष्ण के चरणों में वो लीन हो गया, लीन नहीं हुआ, हमको प्रतीति हो रही है, किसको, बड़े बड़े ऋषि लोग थे, हम लोग तो देखते तो देखते भी नहीं, जो वो तेज आया समा गया उसको देखा किसने, नारद प्रभृति जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि तात्विक थे उन लोगों ने देखा, सब लोगों ने नहीं देखा। कोई मृत्यु हो जाती है किसी की, हम देखते हैं कि इसकी आत्मा कहाँ कैसे जा रही है, कोई ऋषि महर्षि होंगे तो वो जान लेंगे। तो उन्होंने देखा उसका तेज, कौन देखा, व्यास जी इत्यादि ऐसे लोग हैं जो देखेंगे, नारद जी वहां पर थे उन्होंने देखा, और भी लोगों ने देखा जो ऐसे थे। युधिष्ठिर महाराज चकित होकर के पूछा ऐसा क्यों हुआ, उस इसी को कहते हैं, कहते हैं तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा